اکبر همان مهان نمکر مرادی دهان موه کے ناس کے اپائی کی بات چل رہی ہے تو 80, 81 or 82 میں گاتھا میں بتانے کے بعد 83, 84 گاتھا میں کہ موہ ہے کیا اس کے بارے میں اسے پریبھاشت کیا گیا اور اب 85 گاتھا جس پہ اپنی چرچا چل رہی ہے اس میں ایک موہ کے چنہ کیا ہیں. ہم یہ دیکھیں کہ سامنے والے کے موہ ہے تو ہم کیسے پہچانیں موہ کے چنہ کیا ہیں. جیسے اس سمے سار میں 75 گاتھا کے پہلے کہا نا کہ متھیاتو کا کیا چنہ ہے, کیسے مانے کہ یہ متھیا دشٹی ہے کہ اس سمے اجانی ہے کہ جانی ہے. تو اس میں کہا نا ان نے کمس سے پرنام نو کمس سے تہیب پرنام جو کرے دیے ودان دی جانی اور نو کم بے کم ممی احمد محکم چکم میں نو کم مم جائے ساخلی بدھی اپڑی بدھو حبدی تاب ہے. تو انہیں تین چنہ بتائے تو تتو کے پرتی اپرتپتی وشیوں میں اتی رتی اور کرنا بھاو. تتو کے پرتی اپرتپتی شبد تو ایسا ہے کہ بس جس نے کہا اس نے کہا اور جس نے جانا اس نے جانا, گول مول شبد ہے. ارے جگت میں کسی کو پتا نہیں چلتا کہ ہم نے کیا کہا, یدبھی باتیں اس میں بہت ہیں. ارے جگت کا کرتا ایشور نہیں ہے, جگت کا کرتا ایشور کو ماننا اتتو ہے, تتو نہیں ہے, سچی بات نہیں ہے, صحیح بات نہیں ہے. ایک درب دوسرے درب کا کرتا نہیں ہے, ایسا کھول کھول کے باتیں کرو تو معلوم پڑتا ہے. انہیں کہ تتو کے پرتی اپرتپتی کہ تتو کا بھروسہ نہیں ہے کہ تتو کیا ہے کہ تتو ساتھ ہوتے ہیں. تتو آشرت پڑھتے رہو پھر بس, مانے وہ اسے ایسی نہیں ہے کہ کسی کو جا کر چبھے کہ جس کی آنکھیں کھلیں جو جا کے تم سے یا تو پکش میں یا وپکش میں آکرامک ہو کے آ جائے, ایسا کچھ نہیں ہے. مطلب اس مول شبد میں کہ تتو کی اپرتپتی ہوتی ہوگی کوئی چیز, تتو کی اپرتپتی ہے نا. اور دوسری اتی بسر وشیوں میں رتی, تو پانچ اندریوں کے وشیوں میں رتی تو ہم پانچ اندریوں کے جیووں میں دیکھتے ہیں. اور ابھی انہیں نہیں بتائی تھی کہ اندروں میں اور چکرورتیوں میں بھی کتنی رتی دیکھنے میں آتی ہے وشیوں میں رتی. تو کیا کریں اسے منہ متھیا دشٹی کا لکھن مان لیں, انہیں متھیا دشٹی مان لیں. میں وہ بھی ایسا ہی ہے, وشیوں میں اتی رتی کی نندا جگت میں کتنی ہی کی جائے ایک بھی آدمی آپ کے ورد کھڑا نہیں ہوگا, چاہے وہ بھلے ہی ایک بھی نہیں چھوڑے سم میں وہ ہو. درگن ایسا ہے کہ اس کی نندا کرو تو کوئی آپ کو نشید نہیں کرے. یہ کرونا بھاو خطرناک ہے, یہ کرونا بھاو کو سارا جگہ دھرم مانے بیٹھا ہے, سروت کشت دھرم مانے بیٹھا ہے, یہ ایک ماتر دھرم مانے بیٹھا ہے. اور اس کے پرتی جب اسے متھیاتو کا چنہ کہتے ہیں تو ایک دم لوگوں کے کان کھڑے ہوتے ہیں. اس میں اپن نے یہ لکھا ہے کہ دیکھو یدی اس کو چارتر موہ کا چنہ بتایا ہوتا, لکھا نا دھیان دینے یوگ بات یہ ہے کہ یہاں کرونا بھاو کو موہ کا چنہ بتایا گیا ہے. کرونا بھاو کو یدی چارتر موہ کا چنہ بتایا ہوتا تب تو کوئی بات ہی نہیں تھی, کیونکہ کرونا سبھاو روپ راگ بھاو میں آتی ہے اور پنیہ بندھ کا کارن ہے. کنتو یہاں تو اسے درشن موہ ارتھات متھیاتو کا چنہ بتایا گیا ہے جو کرونا کو دھرم ماننے والے جگت کو ایک دم اتپتا لگتا ہے. ایک جو اس میں بات کہی ہے کل جس پہ چرچا کی تھی کہ یہ پریچھا یوگ ہے اور اسے ہم نے پریچھا یوگ نہیں مانا, کرونا کے یوگ مان لیا. کیا جو بھی تھے دکھی جیو ہیں یا سکھی جیو ہیں, جو بھی دنیا ہے تو ساری دنیا ये आत्मा की गेय है। अब इसे हम ऐसी बोले कि उनके ज्ञान रूप जो पर्याय अपने में उत्पन्न हुई आत्मा ने में जो ही पर पदार्थ के, तो पर पदार्थ उसके क्या है, निमित्त हैं, माने गे रूप निमित्त हैं। वे जो जानने में आए तो कुछ गे रूप निमित्त होते हैं, कुछ उदय रूप निमित्त होते हैं, तो यहां वो सारे पर पदार्थ सारी दुनिया केवल ज्ञानी का गे है, गे रूप निमित्त है। केवल ज्ञान जो उन्हें पता हुआ वो केवल ज्ञान उनके ज्ञान गुण का तो उनका उपादान है, उसका वो उपादेय है, ज्ञान गुण है कारण उपादेय उपादान, और उसका उपादेय कौन है, वो केवल ज्ञान। अब इस केवल ज्ञान का निमित्त कौन है, तो वो कहते हैं एक तो ये कहेंगे ज्ञानावरणीय कर्म का नाश, एक ये कहेंगे सारा लोकालोक निमित्त है, तो गे रूप निमित्त हुआ ना, तो गे रूप निमित्त का ये नैमित्तिक हुआ। केवल ज्ञान क्या हुआ, निमित्त उपादान, तो दादा ने खूब रटाया है ना, अच्छी तरह से पढ़ाया है तुम लोगों को, तो नैमित्तिक हुआ ना, तो ये केवल ज्ञान उन सारे पदार्थों का नैमित्तिक था। क्या, क्योंकि वे गे थे तो उनसे जो कार्य हुआ केवल ज्ञान वो नैमित्तिक था। अब तुम कहते हो कि उनको देखकर हमें करुणा आई तो हमने उन्हें करुणा का निमित्त बनाया, क्या समझ में, यानी वो प्रेक्षा योग्य थे, उन्हें हमें गे बनाना था, क्या करना था, पर हमने गे नहीं बनाया, हमने हमारी करुणा का पात्र बनाया, यानी उनको निमित्त रूप से कर्ता कहें तो किसका कर्ता कहते हम, बोलो, केवल ज्ञान का कर्ता कहते हैं ना, सारे गेयों को निमित्त रूप से कर्ता यदि मानेंगे तो केवल ज्ञान को मानेंगे। अब यहां आपने क्या क्या बना दिया, उस करुणा भाव का कर्ता बना दिया, वो तो करुणा भाव का नैमित्तिक हो गए, तो कितना बड़ा अपराध हुआ, समझ में नहीं आया अंदाजा, यानी हमें सिर्फ जानने का काम उससे करना था तो उनने उसी से हमने एक करुणा नाम का दुख पैदा कर लिया, जबकि वे दुख रंच मात्र भी हुआ था नहीं, उनके दुख देखकर हमें जो दुख हुआ ना, यानी हमें करुणा भाव जगा, क्या जगना चाहिए था, अकेला ज्ञान जगना चाहिए था, तो केवल ज्ञान होता, केवल ज्ञानी वो केवल ज्ञान हुआ लो, और हमने क्या किया, ज्ञान मान तो हुआ नहीं कुछ भी, और करुणा जगा ली, करुणा तो बहुत तकलीफ का काम है, वो ऐसा दुख है शांति जी कि जिसमें का जगत में कोई इलाज नहीं है, ऐसी बीमारी है, क्यों नहीं है इलाज, क्योंकि उसके दुख को दूर वे अरहंत भगवान भी नहीं कर सकते, किसी दूसरे परद्रव्य के दुख को दूर, और हम कर नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता ना, तो हमने कौन सा काम अपने माथे लिया कि जो गारंटी से कभी पूरा नहीं होने वाला है, तो ये हमारा दुख कभी मिटेगा ही नहीं, ये करुणा नाम का जो दुख है अभी पहले से दुख मानो, क्योंकि दूसरे के दुख को देखकर जो दुख हुआ ना हमें उसका नाम करुणा है ना, इतना तो नक्की कल तक हो गया था ना, अभिनंदन जी बहुत बारीक की बातें हैं, और मैं यहां वानी उलझाकर वही बातें कर रहा हूं, तो आप चले जाएंगे फिर आपको कम से कम सुनने को नहीं मिलेगी, इन्हें तो मिलेगी अभी 4-6 महीने। देखो यानी हमने काय का निमित्त बनाया करुणा का, करुणा क्या है, दुख, जो हमारे ज्ञान केवल ज्ञान जैसे ज्ञान का निमित्त था उसे हमने दुख पैदा किया, जो दुख का कारण नहीं था जब हमने इसे उसमें दुख पैदा कर लिया, तो क्या करना भगवान, बात ही सोच लो, किसान जगत में जो जीव हैं दया के पात्र जैसे अपन बोलते हैं ना, करुणा के पात्र, तो सभी जीव हैं। नारकियों का विचार करो तो अभी वे तो विचार ही की सीमा तक हैं। यही बोलो, विचार करो थोड़ा, कहें नारकी भी यहीं से दिख जाए, या हमारे कोई फिल्म विल्म बना के बढ़िया ऐसी नारकियों की कल्पना कर करके कैसे चिपकाया जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, चीरा जा रहा है, बना देते ना है? तो उससे हमने क्या किया, अरे अरे हम दुखी हो जाते हैं, कितना दुखी हो गए। वो काय के लिए बनाई फिल्म? आप नरकों में कैसे दुख हैं आप ये जान लें। कोई भी चीज ये तो जानने के लिए ही बताई जाती है कि नहीं, लेकिन आपने जाना तो नहीं, तो क्या पैदा किया? अरे रे 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 रे, बहुत करुणा का दुख पैदा किया। आप उन पर दया नहीं आएगी? यहां किसी पे आपको दया आती है, कोई किसी को पीट रहा है तो आपको पीट न माने आदमी को नहीं, मान लो गाय को किसी ने डंडा मार दिया तो आपको दुख होता है ना ये देख करके। लेकिन आप तो उसे रोक सकते हैं, थोड़ा आप समझते हैं कि हम जाके समझाएंगे, बुझाएंगे, नहीं माने तो धमकाएंगे, हम उसे रोकेंगे। उसे दुख दूर करने का कुछ उपाय आपको दिखते हैं, समझ गए ना? अब नरक क्या दिखा आपको? अब नरक में जाके तो आप कुछ कर नहीं सकते, उपाय तो आपके हाथ में कुछ है नहीं, तो क्या होगा उस दुख का? पद्म पुराण में एक बात आती है कि जब राम और लक्ष्मण नरक चले गए और रामचंद्र जी ने दीक्षा ली, सीता जी तो पहले ही दीक्षा ले गई थी, पर वे सूल में स्वर्ग में जाकर के प्रतींद्र हुई थी, इंद्र नहीं हुई थी, प्रतींद्र हुई थी। तो वहां उनको रामचंद्र जी के को केवल ज्ञान हो गया था, यहां तो उनने रामचंद्र जी पर उपसर्ग किया था। क्यों किया था उपसर्ग? क्योंकि यदि ये डिग जाएं ध्यान से तो इन्हें केवल ज्ञान ना हो जाए, तो ये मोक्ष नहीं जाएं, तो यही स्वर्ग में ही आ जाएं, तो हम फिर कुछ दिन साथ रहेंगे, फिर साथ में मोक्ष चले जाएंगे। इसमें तो साथ चाहने वाले कितना खतरनाक होते हैं, ठीक है ना? गुरुदेव के साथ मोक्ष जाएंगे, इनका बस चले तो गुरुदेव को ही रोकने के साथ, गुरुदेव मम्मी तैयार नहीं हूं, जरा रुक जाओ है? क्यों? ये मोक्ष जाने के लक्षण नहीं है, ये मोक्ष जाने का मार्ग नहीं है। उस सीता ने सोचा कि इनको कुछ दिन और अपन साथ रहने का मजा ले लें, फिर तो मोक्ष में चले ही जाएंगे। तो उन्हें डिगाने के लिए बहुत कोशिश की। देखो अपन समझते हैं कि उपसर्ग शत्रु ही करते हैं, इन्हें शत्रु माने के मित्र माने क्या मानो? आखिरकार उनको वे नहीं दिखे और केवल ज्ञान हो गया, तो फिर उन्हीं के समूषण में जाकर के ये बातें करने लग गई और उनसे पूछने लग गई कि लक्ष्मण कहाँ हैं, रावण कहाँ हैं। माने उनको वो सब लोग उनके दिमाग में कितनी गहराई से घुसे थे। क्यों? ये भी एक ऐसा प्रसंग है जिस पर कुछ लिखने लायक है, है? देखो कि वो यहां तो क्या हुआ था, ले आए थे, रावण को मार दिया, लक्ष्मण जो भी हुआ सो, क्योंकि जब इनको दूसरी दफे वनवास हुआ था तो रामचंद्र के माथे मर दो, लेकिन उसमें लक्ष्मण का हाथ भी था। थोड़ी बात कहूं, राजा कौन था? जैन धर्म के हिसाब से नारायण राजा होता है, नारायण प्रति नारायण को वो मारता है, वो जो शिला उठाता है नारायण को, वो जीत पाएगा। तो लक्ष्मण राजा था, तो राम तो राजा थे ही नहीं, वे तो राजा के बड़े भाई थे, क्योंकि उनने कहीं का राज उन्हें नहीं सौंपा था। वो है ना कौन, प्रद्युम्न था ना, चौथा भाई क्या था, प्रद्युम्न क्या नाम था, शत्रुघ्न, उसको मथुरा का राज दिया था, किसी को कहीं का दिया था, किसी को कहीं को दिया था, भरत को राम को कहीं का नहीं दिया था। भरत तो दीक्षा लेके चले गए, क्या करते हैं, और राम फिर घर में रह गए। तो लक्ष्मण राजा थे, अब मैं कहता हूं जरा समझ, मेरी कल्पना की बातें हैं, जैन धर्म के हिसाब से सुनना, कि लक्ष्मण तक ये बात आई शिकायत कि वो एक धोबन ऐसी हो गई थी, ऐसा किया उसने, ऐसा ऐसा किया, ऐसा हुआ, और लोग सीता के बारे में उंगली उठाते हैं। तो लक्ष्मण ने रामचंद्र जी से कहा बुला के कि भाई साहब बहुत बदनामी हो रही है, कि क्या करें क्या करें, कि कुछ करना चाहिए, समझ में आए ना, नहीं तो राज में बहुत बदनामी होगी। तो वो मैंने मूल में उसके लक्ष्मण थे, भले ही उनसे सेनापति कृतांत वक्र तो लक्ष्मण के सेनापति थे, राम तो राजा के बड़े भाई थे, सेनापति कोई बड़े भाई की आज्ञा थोड़ी मानता, राजा की मानता है ना। लेकिन बहुत दिक्कत थी आचार्यों को भी और सबको, क्या लिखें कैसे लिखें, जो भी वर्णन आता है सामने उसकी बहुत परेशानी का काम है वो, है ना। मेरे कहने का मतलब है कि लक्ष्मण ने भी उनके वनवास में निमित्त थे, जो भी हुआ लक्ष्मण भी कहां है उनको भी जानने की इच्छा हुई, और रावण तो अपहरण ही करके ले गया था, लेकिन वो कहां है उसको भी जानने की इच्छा हुई। कैसी है इच्छा का स्वरूप, और उन्हें जो बताया वो जहां है वहां बताया, और वो सीता का जी वहां गया, वो सिर्फ मजा देखने नहीं, क्योंकि कितने दुखी जा देख के मैं खुश हो लूं क्योंकि मेरे को बहुत तकलीफ पहुंचाई उन लोगों ने, उनको वहां से बचाने के लिए गए, निकालने के लिए गए, अकेले लक्ष्मण को नहीं रावण को भी। कैसा राज का स्वरूप है, और वे नहीं निकाल सके, तो फिर लौट के आए और आकर के फिर रामचंद्र जी से पूछा कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वे निकलते ही नहीं है। तो कहा तुम कोशिश वोशिश मत करो, नहीं निकाल सकते, जिसका जो है उसे वो भोगना पड़ेगा। फिर उन्होंने भविष्य पूछा तो उनका भविष्य बताया कि भाई ऐसे होने वाले हैं, भी वहां तीर्थंकर होने वाले हैं, भी वहां तीर्थंकर भी गणधर होंगे, जी होंगे, वो सब वहां है। लंबी कहानी है वो, मुझे नहीं कहनी है, मैं तो सिर्फ इस संदर्भ में इतनी बात कह रहा हूं कि वहां भी उन्हें करुणा भाव जगा उन्हें बचाने का, लेकिन पूरा तो नहीं कर पाए। अभी हमको लगता है कि हम कुछ कर कुछ कुछ कर लेते हैं, लेकिन बस सब जगह ऐसी बात है, जब वहां जाकर के उनके दुख को दूर नहीं कर पाए तो करुणा से जिस पे हमें करुणा आई उसको दुख हुआ, उसको देखकर जो हमें दुख हुआ तो इसका इलाज क्या था, इसका इलाज हमने क्या समझा कि उसका वो दुख दूर हो जाए तो हमारा दुख दूर हो, क्यों, इसलिए हम कहां कोशिश करते हैं, उसके दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं, हम अपने दुख को दूर करने की कोशिश नहीं करते हैं। अपना दुख कौन सा है, उसके दुख को देखकर जो दुख हुआ है। सुनो मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं अभी कोई दिमाग बहुत ठीक है, पागल नहीं हुआ हूं, ये ऐसी ऐसी बातें कह रहा हूं, देखो तुम समझ, सुनो क्या कहना चाहता हूं मैं। यानी दो दुखी हैं, कौन, एक जिस सामने वाले को दुख है और उसके दुख को देखकर हमें दुख है, तो हम इस करुणा में ऐसी बीमारी है जे कि उसके दुख को दूर करने का विकल्प की सीमा, विकल्प ज्यादा तेजी से आता है, उपयोग उधर लगता है, मैं अपने दुख को दूर करूं इसमें उपयोग नहीं लगता, कैसा खतरनाक काम है। होना ऐसा चाहिए ना कि हम अपने दुख को दूर करें, कभी समझ नहीं आ रहा ना, बोलो अभिनंदन जी। और अब वो दुख दूर करने हो नहीं सकता, परद्रव्य का कर्ता नहीं है आत्मा, ये सिद्धांत हमने पढ़ा है ना, सीता जी जानती होगी कि नहीं, थोड़ा बहुत जैन धर्म का यदि भरोसा होगा तो जानती होगी, फिर भी कोशिश तो कर ही रही थी ना, है? अब छायक मायक जाने दो, काहे को छायक को कि ज्यादा दुर्दशा क्यों कराते हो फिर वो उधर ही आ जाओ कि वे परीक्षा योग्य थे। यदि उसको विकल्प आ गया था कि वे कहां हैं और कैसे दुख भोग रहे हैं, क्या है, सुखी हैं कि दुखी हैं, तो उनने पूछ लिया था भगवान से, उनने बता दिया था, बात खत्म हो गई थी उसकी। बात माने गे पने का काम तो पूरा हो गया था ना, मेरा मतलब समझे ना। अब गे पने का कि भगवान ने तो बताया, दिल्ली के जाके देखूं तो है वहां के नहीं, तो भगवान की बात को कन्फर्म करना था तुझे। क्यों भगवान की बात को कन्फर्म करना था, काय को गए थे वहां, क्या जरूरत थी जाने की, कोई बहुत अच्छी जगह थी वो घूमने जाने के लिए, देखने की, फिर उन्हें बताने की कोशिश की, और फिर वो नहीं बचे तो भगवान ने कहा कि वे नहीं बचेंगे तो मानी। पहले भगवान कहते हैं कि वे नहीं बचेंगे तुम मत माथा मार, तो वो नहीं मानते। वो ये लिखा है यहां पे विप्रेक्षा योगी, इसमें इसका अर्थ कर रहा हूं मैं कि वो हमारे सिर्फ देखने लायक है सारे पदार्थ, सुखी दुखी जो भी है, और हम देखने लायक में की सीमा में नहीं रहते हैं। उससे हमको ज्ञान पैदा होना चाहिए ना, वे ज्ञान के निमित्त होना चाहिए ना, तो वे हमारी करुणा के निमित्त होते हैं। करुणा तो एक मोह भाव है जो दुख रूप है, दुख रूप भाव हमने उसे दुख का निमित्त बनाया, ये गजब हो गई ना। जो बिल्कुल ज्ञान का निमित्त था उसे हमने दुख का निमित्त बनाया, कितनी बड़ी भूल है। अब हम क्या करते हैं कि हमें वो दुख दूर करना है, क्योंकि दुख तो उसी का नाम है जिसको खुद, जो दुखी होते हैं ना हम, तो दुख को दूर करने की तड़प हमारे अंदर पैदा होती है। और जो भी हमें दिखता है, जैसे मान लो कि मुझे प्यास लगी है तो पानी मिल जाए तो मेरा दुख दूर हो जाएगा, ऐसी कल्पना होती है। लेकिन कभी कभी ऐसी होती है कि प्यास लगती है और पानी पीने से बुझती नहीं है, पेट भर जाता है और पेट में जगह नहीं है, अब बस गला सूखता है, गला सूखता है, फिर बोले ही नहीं जाता है, फिर पानी, और पानी पेट मांगता नहीं है। इसका मतलब वास्तव में वो प्यास नहीं है, वो कुछ और है, पर हमें तो एक ही इलाज मालूम है, क्या ये पानी पी लो, इस प्यास का जो ये पानी पी लो, भूख लगे तो खाना खा लो। अब करुणा हो तो उसको जो सामने वाले को दुख है वो दुख दूर कर दो, तो नारकियों का तो हम कर नहीं सकते, हमें पक्का हो गया कि नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें नारकियों की छुट्टी कर दी, मनुष्य तुरंत दो पैर रखा है? और देव दुखी नहीं है, जिन्हें देख के हमें करुणा आए, ऐसा दुख नहीं है उनके, यदि तत्व का विचार करें तो दुख है ही, जिन्हें दोनों की छुट्टी कर दी। अब हमें मनुष्य त्रेंज, ये ऐसे प्रसंग हैं कि चारों तरफ यदि तत्व ज्ञान की वजह से और हमारे मान लो पुण्य का उदय हो, अनुकूलता हो, चित्त शांत हो, हमने नहीं लड़ने की प्रतिज्ञा ले ली हो और बिल्कुल सहज भाव से निराकुल तरीके से अपना जीवन बिता रहे हो, तो भी चारों तरफ का तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। चारों तरफ के जीव तो जो जो, जो सुखी दुखी होंगे वो होंगे ही ना, गाय बैल कुत्ता बिल्ली, अभी तुम्हें कल सब्जी की इल्ली मिल्ली जो क्या है जो बोलते हो लठ मठ, चारों तरफ जीव है ना, कितने मक्खी मच्छर हैं, तुम हैं हम हैं, तो इन सब का दुख थोड़ी हम दूर कर सकते। तो करुणा का तो कोई इलाज ही नहीं रहा ना। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें तो हम दुखी हैं और हमें अपने दुख की बात करना है। कोई कहे मुझे बहुत जोर की भूख लगी है ना, तो कह ठीक है चलो हम आपको खाना खिला देते हैं, कि सर मेरे साथ 1000 आदमी हैं, तो क्या कहोगी तुम कि चलो मैं भोजनालय में चलो मैं खाना खिला देता हूं, क्या कहते कि भैया हाथ जोड़ता हूं मैं, तुम अकेला चलना हो तो मैं अकेला चलता, यही कहो ना, यही होगा ना। तो इस जगत में तो अनंत खड़े, इसका इलाज कैसे हो सकता है। किसी पे हमें करुणा आई। تم ایک کا تو علاج کر سکتے ہیں میرا مطلب کہنے کا, لیکن وہ تو جیووں کی لین لگ رہی نا کہاں, ان کے لیے ہمیں نرک سرک میں نہیں جانا پڑے گا, یہیں پر لین لگ رہی, یہاں سے نکلے چنتی چل رہی ہیں, چنتے چل رہے ہیں, کیڑے چل رہے ہیں, مکھی چل رہے ہیں, مچھر چل رہے ہیں, کیوں اور سب دکھی ہیں, اور سب دکھ کے سب کا دکھ کا کارن کیا ہے, آچار کے دیہ میتھا دس میتھا گانا میتھا چارت ہے, ہم اور مان لیں کہ پانی نہیں ہے, پیڑ کھانا نہیں ہے, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, اور ہم نے ایسے اور کارن مان رکھے ہیں دکھ کے, اور ان دکھوں کو تو ایک آدمی تک کی تو سیما رہے تو کچھ انتظام ہو سکتا ہے نا. کبھی کبھی لوگوں کو میرے باہر سے کرورتا دکھتی ہے, جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ میں تو ودیارتھیوں کے علاوہ کسی کو نہیں رکھوں گا, نہ تو رہنے کو جگہ دوں گا اور نہ کسی کو بھوجن کی سویدھا دوں گا, کہ وہ کہتا نہیں میں تو شدھ بھوجن کرتا ہوں, بازار میں میرے لائق کھانا نہیں بیٹھ ملتا ہے, اب میری پڑھائی ہے, کائی کی ہے, وکالات کی ہے, ڈاکٹری کی ہے, انجینئرنگ کی ہے, تو میں کہتا نہیں ہمارے یہاں کسی قیمت پہ نہیں جگہ, یہ قیمت ویمت تو جانے دو, لیکن میں سفارش لے آؤں کسی کی, بھگوان مہاویر کی بھی لائے گا تو نہیں چلے گی تیری, میں پہلے سے ہی کہہ دیتا, آج تک تو کسی کی مانی نہیں میں نے تارا چند جی, آج تک نہیں مانی, کیونکہ نہیں مانتا تو میں اتنے ودیارتھیوں کو یہاں شانتی سے پڑھا نہیں سکتا تھا, سب بھر جاتے بے لوگ, کتنا بڑا کالج یونیورسٹیاں ہیں کتنے ہیں, اور کہاں بھوجن کی ویوستھا ہے, کہ کیسے کیسے گندی گندی کھانا کھانا پڑتے ہیں, تو سب جنیوں کے لڑکے کوئی آتے وہ ہندو مسلمان بھی آتا کہتا میں بھی نہیں کھاتا ہوں صاحب, ابھی موکھیوں کو تو کھلا نہیں پاتے ہیں, ان کی ویوستھا تو کر نہیں پاتے ہیں, ہے نا, تو نہیں کچھ نہیں, تو لوگوں کو نردیتا لگتی ہے, یعنی پھر سارے جگت کو کھول دو, تو ابھی تو کتنے اتنے تک سیمت رکھا اپنے وکلپ کو, اس میں بھی کتنا وکلپ ہوتے ہیں کیا, لیکن یعنی سارا جگت کرونا تو سب کے لیے کھلی ہے نا, جو آپ دیکھو گے وہاں دکھی دکھی نظر آئیں گے, وہ بھجن بولتے ہو نا, یا سنسار میں کوئی سکھی نظر نہیں آتا, یا سنسار میں کوئی سکھی نظر نہیں آتا, اب دیکھو کتنی کتنی گپیں ٹھوکی ہیں, کیا کوئی تن بنا دکھیا, کوئی روٹی بنا دکھیا, کوئی سنتان بنا دکھیا, لیکن نہیں بولو دو چار شبد تمہیں یاد ہوں گے نا, کسے بھجن نہیں ہے آج کسی کو, ماتائیں بہنوں کو ہوگا,
کوئی نردھن دھن بن دکھیا تین وچن مکھ بولے,
ہاں بولو بولو,
بھرمت پھرے پردیسو ماہی دھن کی چاہ میں ڈولے,
ہاں
دولت کے بھنڈار بھرے ہیں تن میں روگ سمایا, نشدن کڑوی کھات دوائی کہا کرت نہیں کایا, تن نیروگ اور دھن بہو تیرا پھر بھی سکھ کو روتا, پوجت پھرت کدیب جگت کے تدپی پتر نہیں ہوتا, تن دھن اور سپتر پائے کے پھر بھی رہا دکھاری, پتر نہیں آگیا کو مانے گھر میں کرکسا ناری,
ہے نا,
تن دھن اور سلکشن ناری سوت ہے آگیا کاری, پھر بھی دکھیا رہا جگت میں ہوا نہ چھتراداری, کوئی منسٹر ادھیکش نہیں مل پایا,
وہ اپنی ایک وہ ہے نا بارہ بھاونا بھی, کون سی بیراگ بھاونا, اس میں بھی آتا ہے کوئی اس کے بنا دکھی, کوئی اس کے بنا دکھی, اب یہ ایک بات سچی نہیں ہے اس میں, کیا لکشمی کیا کہہ رہا ہوں میں, ایک بات سچی نہیں ہے, نہ تو کوئی پیسے سے دکھی ہے, نہ پتر نہیں ہے اس لیے دکھی نہیں ہے, کوئی کلہ نہیں ناری ہے نہ اس لیے دکھی ہے, یہ کوئی دکھ کے کارن ہی نہیں ہے, دکھ کے کارن تو اپنا اجان ہے, متھیاپت ہے, اسنجم ہے, پھر کرم کا ادے نمت ہی ماننا ہو تو ان سے کیا لینا دینا, ان سنج میں اس نے سب سنجوگوں میں ہی دیکھا, ابھی تو سدھارنا پڑے گا, ہاں جو اچھا کا تیاگی ہے وہی واسطو میں سکھیا ہے, اور کوئی تیاگی سکھیا نہیں ہونے والا ہے, تو ہم تو سکھ کا کیا کرتے ہیں, इसका इलाज करते हैं, खाने कैसे दुखी है तो उसका इलाज करते हैं, बीमारी है तो उसका इलाज करते हैं। इलाज क्या? अभी वो करुणा का, वो करुणा नाम का जो दुख अपने को हुई है बीमारी, करुणा नाम का कैंसर हुआ है, अब उसका इलाज क्या है? है मेरे पास लेकिन नहीं मानेंगे आप लोग क्या है? हम तो उसके दुख को दूर करने के लिए कि उसके दुख का इलाज मेरे पास नहीं है, तुम्हारे दुख का इलाज मेरे पास है। क्यों? कि तुम मेरे विद्यार्थी हो। यही तुम कहे कि तुम बहुत स्वार्थी हो, बस अपने विद्यार्थियों का दुख का इलाज करोगे और हमारा नहीं करोगे। अरे भाई, तुम उसका दुख दूर नहीं कर सकते हो, उसके दुख का विकल्प मत करो, उपयोग को वहां से हटा लो। है? उसके दुख से तुम दुखी नहीं हो क्योंकि तुम्हारा स्वयं का दुख क्या कम है? स्वयं के संयोगों में देखना है तो उसमें भी तुम्हारा अकेले अपने में ही लगाओ तो बहुत है, अनंत है। हम तो अभी अकेले संयोगों में भी नहीं लगाने की बात कर रहे हैं। तो ये इलाज है तो कहते तो इलाज नहीं है, आप तो ये तो बात कर रहे हैं इलाज मत करो, ऐसा इलाज है? आप तो ऐसी बात कह रहे हैं कि इलाज मत करो, यानी हम कह रहे हैं खाना, हमें भूख लग रही है तो हमें खाना दे दो, खाने का इंतजाम कर दो। तुम कहते हमारे पास भूख के दुख मिटाने का इलाज हमारे पास है, ये क्या है इलाज है? क्या है ये जो तुम्हारे पास थोड़ा बहुत भी ये जो है ना मूंगफली मूंगफली जो कुछ भी थोड़ी बहुत हो तो जाके भगवान के मंदिर में सुधा रोग बिना सुनाए नई वेदम करके चढ़ा दो। क्यों? क्योंकि इनका बहुत उपयोग किया आज तक, पछुड़ा नाम का रोग इनसे दूर नहीं हुआ। सुधा नाम का रोग आज तक दूर नहीं हुआ। अग्नि द्रव्यों का क्या क्या बोलो, छंद बोलो ना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्षुधा नाम का रोग है तो उसके विनाश का इलाज भगवान के सामने तुम कह रहे हो कि ये खाना पीना नहीं है, वो कर तो वो ही रहे हो है? तो कैसे खाना बंद कर दें? कि मैंने तो मरते दम तक भी खाना बंद नहीं करना ऐसा समझाया है इसी गद्दी पे बैठ के संलेखना में। क्यों कहा गया? नहीं कहा? तुम कैसे कहते हो मैं कह रहा हूं खाना बंद कर दूं? मैं तो ये कह रहा हूं खाना से भूख नाम का दुख मिटेगा नहीं। तुम नहीं खाओ ये कब कह रहा हूं? क्या कह रहा हूं? ये जो क्षुधा नाम का दुख है एक भोजन से कभी दूर नहीं होता, ये समझ लो। क्या करो तुम भी, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। तुम खाओगे नहीं खाओ ये कौन कह रहा हूं? वो करुणा नाम का दुख है ना, अपन को दिक्कत ये है कि हमने तो उसे बहुत दुख ही नहीं माना था। अब आचार्य कहते सबसे बड़ा दुख है मोह का चिन्ह है, दर्शन मोह का चिन्ह है। क्यों? देखो तो अकेला अपना दुख, वो अपना दुख और सारी दुनिया का दुख वो करुणा। अब बोलो कौन कौन बड़ा है? आवेल मुझे मार वाली जबरदस्ती ले लिया ना, जो जो दुखी हमें दिखेगा जगत में क्यों, और उन सब का दुख दूर हमें करना है। अरे भाई तुम नहीं कर सकते हो, तुमको पहले वो दुनिया के दुख बताए थे, तुम्हें जो पहली ढाल पढ़ाई थी क्या कि चारों गतियों में दुख ही दुख है, पहली ढाल पढ़ाई थी ना छह ढाला की, वो इसलिए नहीं पढ़ाई थी कि सबके दुख दूर करने का बीड़ा उठा के और तुम चल दो। काय के लिए पढ़ाई थी? दूसरी ढाल पढ़ाने के लिए पढ़ाई थी कि तुम हमसे ये पूछो कि ये दुनिया के जीव इतने दुखी हैं तो वे क्यों दुखी हैं, तो हम तुम्हें बताएं कि ऐसे मिथ्याद्र ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत भद दुख जन्म मरण, हम ये फिर बताएं तुम्हें वह मिथ्याद्र ज्ञान चरण क्या है, फिर ये बताएं हम फिर तुम ये पूछोगे ये कैसे नष्ट हो, तो हम तुम्हें ये बताएं कि ये कैसे नष्ट हो। परद्रव्यंते भिन्न आप में, वो बताएंगे हम तुम्हें, समझ में आएगा। हम तो इसलिए तुम्हें पहली ढाल पढ़ाई थी, ये जगत के जीवों को दुख बता बता के तुम सब धंधा पानी छोड़कर क्यों। उदाहरण के लिए कहता हूं, एक दिन तुम लोग इस पक्षियों की रक्षा करने जाते हो ना, वो तुम्हारा दिन आएगा, कब आएगा, जब जैसे वो निकल गया संक्रांत के दिन, जब ये पतंगे उड़ाएंगे पक्षी कट कट के मरेंगे, तो तुम दौड़ दौड़ के उनका इलाज करोगे क्यों। यदि तुम वो ही काम, वो बहुत बढ़िया काम है ना, हमको बुलाकर रोजीना प्रशंसा करवाते हो हर साल, हम जाके देख के करते भी हैं क्यों, तो वही भाई साहब बहुत ही अच्छा काम है, तो 12 महीना तुम वही करो ना, क्यों छोड़ो ना ये पढ़ना लिखना है, नहीं नहीं नहीं, तो काय को झूठा प्रदर्शन करते हो, एक हुद्दू बनाते हो दुनिया में, हम नहीं कर सकते सारे। देखो हम जब पढ़ते थे तो हमारे जो बड़े गुरुजी थे मक्खनलाल जी, वो ऐसी बातें करते थे कभी कभी, तो हमको बहुत दुष्ट लगते थे। सच बोलते हैं, कहते हम किस किस का कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम कहां कहां कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल यही तर्क है मेरा जो मैं आपसे बोल रहा हूं ना, वो कहते थे जो वो आखिरकाल वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका की थी, उनने पंचाध्यायी की टीका की थी, तो ये अध्यात्म शास्त्र उनने पढ़े थे, तो ये सब बात उनके ख्याल में होगी। अब वो चक्कर में पड़ गए थे जिस पंथ के, तो जो पढ़े थे वो ठीक है, पार्टी बंदी चक्कर में जो भी समझ लो, तो लेकिन ये बात आती थी। अपनी क्या बात चल रही है, विषय के बाहर तो नहीं जा रहे। करुणा वाला जो दुख है वो मोह का चिन्ह है। अब हमको करुणा के वाला जो दुख दूर करना है, तो वो मोह नाम के बीमारी का इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो चिन्ह है मोह का। बीमारी का नाम क्या है, समझ में आ गया ना। जब हम कहते हैं ना ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा, ऐसा होने लगेगा, तो जी कहते कैंसर का चिन्ह है, ये हार्ट अटैक का चिन्ह है, ऐसा बताते हैं ना अपन, ऐसे ऐसे बाहर लक्षण दिखाई दें तो ये कोई भयंकर बड़ी बीमारी का चिन्ह है। तो वो जो करुणा है तुम्हारे को आ रही है, वो दर्शन मोह का चिन्ह है, माने मिथ्या मान्यता है तुम्हारी, और तुम जो कर रहे हो वो सिर्फ उस उल्टी मान्यता पर आधारित है कि मैं उसका दुख दूर कर सकता हूं, और ऐसा मानो कि दुख दूर तो मैं कर ही नहीं सकता, फिर भी अपन कोशिश करेंगे तो अपन को पुण्य मुफ्त में बन जाएगा, है ना। ऐसा होता है, सही घटना बताता हूं, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र थे, उनका स्वर्गवास हो गया, महीना में या तो 15 दिन में 2-4 दिन मैं उनके घर खाना खाता था, या वे मेरे घर खाना खाते थे, और बिना निमंत्रण के बिना सूचना के बस जहां बैठे वहीं खा लिया, फिर बाद में कह दिया हम तो खा लिया, घर वाले चिल्लाते रहते, गालियां देते रहेंगे, क्या करेंगे, समझे ना। तो उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता था, इस दया की कहानी, एक घटना कि उनने मेरे पास फोन आया कि उनने कहा ये विद्यार्थी मैं भेज रहा हूं तो इसे आप भर्ती कर लेना। मैंने कहा कि सोहनलाल जी ये परसों से कॉलेज के एडमिशन क्लोज हो गए हैं, यूनिवर्सिटी से लिस्ट जाती है, वो लिस्ट चली जाती है तो उसके बाद फिर भर्ती नहीं कर सकते, जब वहां भर्ती नहीं होगा तो हम कैसे भर्ती कर लेंगे। ये बात मैं उन्हें 2-3 दिन पहले बता चुका था, तो मैंने उनसे फोन पर ही कहा कि आपको मालूम है भर्ती हो ही नहीं सकता। नहीं 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 बिल्कुल अपना ही बच्चा समझना, आपको तो भर्ती करना ही है, ऐसे बोलते रहे। मैं कह रहा हूं मेरी सुने ही नहीं। मैंने फोन गुस्से में रख दिया। अब वो आदमी आया मेरे पास, तो गुस्से तो उन्होंने कह दिया चले जाओ हो जाए, लिख के दे दिया। मैं आया तो मैंने बहुत समझाया तो यूनिवर्सिटी का चला गया, कुछ नहीं हो सकता, ये देख के ये कर करके वो करके, बोले नहीं नहीं साहब नहीं साहब नहीं साहब, बहुत कहता रहा। मैंने कहा नहीं हो सकता। फिर वो चला गया, भर्ती तो लड़के को होने ही नहीं था। फिर मेरे पास उनका फोन आया, कैसा वो आया था? मैंने कहा हाँ आया था, क्या हुआ? मैंने मना कर दिया, चला गया। बहुत दुखी था, बोले आपको तो जो समझ में आए सो करो, क्या करूं, मेरे सामने बैठा था सामने बैठा था और कह रहा था कि आप तो कह दो कि अपना ही बच्चा है, अपना ही बच्चा है, ऐसे ही बच्चा है। तो मैंने कहा भाई तुम तो बहुत अच्छे बन गए, क्यों कि तुमने तो कह ही दिया, नालायक तो मैं ही हूं जो अपने अच्छे दोस्तों की बात भी नहीं मानता हूं। हमारी तुम्हारी दोस्ती प्रसिद्ध है दुनिया में, अब तो उसको कलंक लग गया, ये वो तो सोहनलाल जी की भी नहीं मानते, आप समझ में आए ना। और मेरी में महीना में 25 बातें उनसे कहता था, वे 25 मानते थे, सारा मेरी छपाई का काम उनके यहां होता था, तो सारा काम बंद करा के मेरा काम शुरू कर देते थे। मैं कहता था मुझे चाहिए 3 दिन में, तो 3 दिन में चाहिए, बस कहता नहीं नहीं किया मैंने नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो हमारे हाथ में ही नहीं है वो काम तो मैंने नहीं किया, ऐसी बात तो नहीं है ना, वो काम तो हो ही नहीं सकता था। तो ये जो करोना नाम का जो दर्द है इसका इलाज हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि उसके पुण्य पाप पर निर्भर है, उसका सुखी दुखी होना उसके पुण्य पाप पर निर्भर है, उसके संयोगों का होना उसके पुण्य पाप पर निर्भर है। उसके स्त्री पुत्र आदि का वियोग हो गया तो वो तो जिंदा हो नहीं सकता दोबारा, जैसे संयोग जिसको हो गए वो हो गए। माने इतने परम सत्य को हम जानते हुए भी ये मुफतिया दुख से कितने दुखी हैं, यानी जो हमारे पेट में दर्द हो रहा, भूख लगती है, अब वो तो जाने दो। मैं मुनि संबंधी चर्चा करता हूं तब भी मैं ये कहता हूं कि जो उनकी ऐसी कठिनाइयां हैं कि जिसमें जीवन खतरे में पड़ जाता है और उसमें उन्होंने क्या कर दिया उसकी चर्चा मत करो, लेकिन जो जिससे कोई लेना ही देना नहीं है, ऐसी जो मुनि धर्म के योग्य काम नहीं है, यदि वो एक मंदिर नहीं बनवाए तो क्या फर्क पड़ता है? एक पहाड़ी का कोई मंदिर छोटा बन जाएगा बड़ा नहीं बनेगा तो क्या फर्क पड़ता है? यानी सिर्फ उन बातों की बात करते हैं जो व्यर्थ के हैं, जो उनसे बिना उनको कोई वर्तमान लाइफ पर ही फर्क नहीं पड़ता, ऐसे हमारे भी लिए भी है, उन्हीं के लिए क्यों है? हम ऐसे कामों में तो नहीं उलझे मुफ्त के, है ना, अब दो रोटी खानी पड़ेंगी तो खानी पड़ेंगी, लेकिन हम बिना व्यर्थ की बातों में तो नहीं उलझे। कौन है व्यर्थ की बात है बता? करुणा के पात्र जो हैं, क्योंकि जिनसे हम करुणा करते हैं उनका किसी का किसी ने आज दख कोई दुख रंज मात्र भी कम नहीं कर पाया। बिल्कुल व्यर्थ है और फिर भी हम उसमें लगे रहते हैं, तो वो चारित्र मोह संबंधी दोष भी है और श्रद्धा संबंधी दोष भी है। श्रद्धा संबंधी दोष निकल भी जाएगा तो भी बहुत काल तक चारित्र संबंधी दोष बना रहेगा, समझ लेना, करुणा वाला दोष कब तक बना रहेगा? कम से कम छठवें गुणस्थान तक, क्योंकि ईर्ष्या समेत पूर्वक चलेंगे ना छठवें गुणस्थान में, तो जीवों की रक्षा का भाव आएगा कि नहीं आएगा? आदान्य क्षेपण समिति पिछली कमंडल उठाएंगे रखेंगे, हैं? मान लो फिर ध्यान में चले गए तो उस वक्त स्टाद के विकल्प नहीं भी होंगे, वैसे तो दसवें गुणस्थान तक रहता ना राग, तो ऐसे ही कोई अच्छा ही राग रहेगा? ये कोई ऐसे रद्दी राग थोड़ी रहेंगे वहां पर, मतलब उत्कृष्ट कोटि का जो स्वभाव होगा ना, होगा तो वो ही होगा ना वहां, अत्यंत मंद कसाय रूप उत्कृष्ट कोटि का स्वभाव। लेकिन फिर भी बुद्धिपूर्वक जैसे अपन बोलते हैं, लिखा ना उसमें टोडरमल जी ने कि दीक्षा भी देते आचार्य है ना, दीक्षा भी देते हैं करुणा बुद्धि से, पढ़ाते भी हैं, बताते भी हैं, समझाते भी हैं, इस समझाने का भाव भी तो करुणा बुद्धि से है। बहुत बढ़िया बात है, खेमचंद भाई कहते थे कि एक जंगल में आदमी को बहुत जोर की प्यास लग रही है, यदि उसे पानी नहीं मिलेगा तो वो आध घंटे में मर जाएगा, ऐसी पोजीशन है। और वहीं एक नग्न दिगंबर मुनिराज है, उनके कमंडलू में पानी है और वो मांग रहा है ये मुनिराज देंगे या नहीं देंगे। वो ऐसा प्रश्न भरी सभा में करते थे हेमचंद भाई अपने व्याख्यान में। फिर वो कहते थे कि वो ही बात कि वो नहीं पिलाएगा, क्यों नहीं पिलाएगा कि शास्त्र में आज्ञा नहीं है, उसको शास्त्र में पिलाने की आज्ञा नहीं है इसलिए नहीं पिलाएगा। तो वो एकदम गुस्से में कहो कि हे गुलाम मार्गी, ऐसा कर देते थे कि वो गुलाम मार्गी है माने शास्त्र में आज्ञा नहीं है इसलिए नहीं पिलाऊंगा। तो वो गुलामी कर रहा है किसकी, शास्त्र की, समझना। जैसे बोलते हे गुलाम मार्गी, तो क्या कहते, क्या करना चाहिए, पिला देना चाहिए, ये तो कोई कह ही नहीं रहा, क्यों क्यों जी। फिर वो आदमी कमंडल उठा के पी ले तो क्या करोगे, क्या करें मुनिराज, छोड़ कमंडल छीनेंगे, उससे लड़ेंगे झगड़ेंगे क्या करेंगे। एक बहुत शोध वृत्ति वाले व्यक्ति थे तो वे कहले कैसे पिला सकते हैं, क्यों कि वो पीने का पानी थोड़ी, वो तो सोच के लिए पानी, अरे उसकी जान जा रही है, है? वो तो बकले की पैसा अभी कान में डलवाने में तैयार है, पर तू कहता ये पानी पीने का नहीं है, तो उसको भी कहते हैं कि वो भी सही नहीं है। देखो क्या नंदन जी, क्यों पानी इसलिए नहीं पिलाएगा भले ही मर जाए, क्योंकि वो पानी पीने का नहीं है, अब पिला देगा तो फिर सोच के जाएंगे तो फिर क्या करेंगे। बहुत बहुत उत्तर आते हैं, तो सही उत्तर क्या है वो भी बताते थे वही खेमचंद भाई, मैं भी बताऊंगा। ताराचंद जी आपने सुना कभी उनको, ये बात नहीं सुनी, हमने भी नहीं बताई आपको, सुनो। वो कहते हैं कि उनमें बहुत करुणा आती है उस पर, किस पे, वो जो प्यास में मर रहा है, लेकिन उनके दिल में कि ये बहुत दुखी है तो क्यों दुखी है, पानी की कमी से दुखी नहीं है, पानी तो इसने समुद्रों पिया है और नरक में जाएगा तो ये 33 सागर तक पानी नहीं पिएगा तो भी जिंदा रहेगा, लेकिन ये दुखी तो मिथ्यात्व के कारण है, समझना, दर्शन नहीं है इसलिए है। तो उन्हें दया आएगी तो उनको आत्मा का स्वरूप समझाने का विकल्प आएगा, क्योंकि वे इस दुख का कारण पानी की कमी को मानते ही नहीं, उनके श्रद्धा में वो बात आती ही नहीं, समझ लो उनकी समझ ऐसी मोथरी हो गई कि उनकी समझ में ये आती ही नहीं कि पानी के बिना कोई दुखी नहीं हो सकता, और मिथ्यात्व से दुखी होता है। और आज के हमारे किसी के भी संत को ये समझ में नहीं आता कि कोई मिथ्यात्व से दुखी हो सकता, सब पानी से ही दुखी हैं, दवाइयां नहीं हैं है? इसलिए दुखी हैं, खाना नहीं है इसलिए दुखी हैं, अच्छे अच्छे पहनने को कपड़े नहीं है इसलिए दुखी है, सबको यही समझ में आता है। वही जवाब देते थे क्योंकि वो उनकी करुणा का स्वरूप है, क्योंकि 24 घंटा उनकी श्रद्धा में ये बात डोलती है कि ऐसे मिथ्याद्र ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ये प्यास कोई दुख नहीं है, ये जन्म मरण ये दुख है, ये संसार में घूमना, ये अनंत काल से चतुर्गति भ्रमण ये दुख है, इसलिए उनको उपदेश देने का भाव आता है। उनकी करुणा उपदेश तक सीमित है, किसी को कोई भोग सामग्री देने तक सीमित नहीं है, क्योंकि भोग की कमी से कोई दुखी है ऐसा उनको मान समझ में ही नहीं आता, उनकी श्रद्धा में ही ये बात नहीं घुसती, उनके श्रद्धा में तो वो बात गहराई से घुसी हुई है। अभी करुणा के बारे में और बहुत कुछ मुझे बोलना है, अभी खत्म नहीं हुआ है।